Om Shanti. Good evening. Welcome to all of you in Shanti Sarovar. और जैसे कि हर संडे हम सभी नए नए अपने फैकल्टी मेंबर्स से उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं, तो आज भी हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पे अपना सेशन शुरू करने वाले हैं और हम सबके बीच एक बहुत स्पेशल फैकल्टी मेंबर भी आज हैं. और आज का टॉपिक, जैसे आप सभी को पता है, क्या है आज का टॉपिक? प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज. सो वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज ब्रदर सीए ललित कुमार फ्रॉम आवर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू. हम सभी तालियों से उनका स्टेज पर स्वागत करेंगे. ललित कुमार भाई अपनी बहुत छोटी उम्र में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए. लगभग 21 साल उनको इस स्पिरिचुअल लाइफ में हो गए हैं और आप माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारी स्पेशल विंग्स की आप सेवाएं करते हैं. साथ ही अकाउंट्स के ऑडिटर के रूप में आप अपनी सेवाएं 1998 से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हर साल लगभग 3000 से ज्यादा सेंटर्स का आप ऑडिटिंग भी करते हैं. और साथ ही 2001 और 2004 में भारत में ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें आपने बहुत सुंदर तरीके से कोऑर्डिनेटर के रूप में रोल प्ले किया था. आपने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की है. साथ ही आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी साथ में ऐसी ही लीगल सर्विसेज अपनी देते रहते हैं. और बिलियन मिनट्स गुड विशेस एक्ट जो 2010 में लॉन्च हुआ था भारत में, उसके आप प्रोजेक्ट डिजाइनर रहे हैं. तो ऐसी विशेष आत्मा से, और आप जानते हैं भारत में जो टच द लाइट प्रोग्राम होता है स्पेशली बच्चों के लिए रखा गया है, उसको भी आपने बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करके उसका कोऑर्डिनेशन आप करते हैं. तो आज हम सभी उनसे सुनेंगे कैसे हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम अपना अवसर, माना अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. ब्रदर ललित कुमार.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. आज के संडे के इस इवनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है. यू ऑल आर हार्टी वेलकम. कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जैसे हम परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं, तो अभी 2 मिनट पहले हम परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे. एक गीत बजेगा यहाँ पे. गीत के शब्द आप वो शब्दों के साथ अपने माइंड को सेट करना एंड रियलाइज दैट वर्ड्स गीत के शब्दों के साथ. तो हम पहले योग में बैठेंगे. प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज. Do you believe in this word that the problems are opportunities? Normally what happens? जब problem आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, माइंड काम करना बंद कर देता है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत दूर की बात हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन जैसा अभी हमने गीत में सुना ना, तूफान आए तो आने दो, अगर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला कोई बच्चा भगवान से ये प्रार्थना करे, हे भगवान परीक्षा मत भेजना आप, मुझे टेस्ट नहीं देना, एग्जाम नहीं देना है मुझे आप, तो क्या होगा? अगर वो एग्जाम नहीं देता है तो आगे बढ़ेगा, 8th स्टैंडर्ड में जाएगा? तो ये लाइफ में आने वाले एग्जाम प्रॉब्लम वो हमें आगे बढ़ाते हैं, वो आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं, हमें चेक करते हैं, हमें मैच्योर बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जहां तक समस्या का सवाल है, प्रॉब्लम्स के बारे में कहें तो उसको मुझे लगता है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते ही होंगे ना प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, प्रॉब्लम किसको कहते हैं, क्योंकि अभी समय कौन सा चल रहा है, जो स्पिरिचुअल माइंडेड है उनके हिसाब से कलयुग का समय चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो यहां एवरी स्टेप पर आते ही रहते हैं। तो आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, किसको कहते हैं, क्या होती है प्रॉब्लम? जैसा भी आपको विचार चल रहा हो प्रॉब्लम के बारे में, जब आपने ये टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक पढ़ के आए हैं आप, तो आपको कुछ तो विचार चला ही होगा इस पर, तो किसको कहेंगे प्रॉब्लम? कंफर्ट, बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन, वेरी गुड। और क्वेश्चन फॉर विच वी डोंट हैव सॉल्यूशन, और जो आई नहीं है, ऐसी सिचुएशन के नेगेटिव थॉट्स हम अपने मन में क्रिएट करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज्ड। और बताइए आप पीछे से भी, नॉट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस और माई लाइक, वेरी गुड। और हु क्रिएट, समबडी एल्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, या सो वी कैन से देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल इन आवर फैमिली, इन आवर ऑफिस, इन आवर बिजनेस, इन आवर सोशल सर्कल, कुछ भी बातें कुछ न कुछ होता ही रहता है और वो हमें प्रॉब्लम फील होती है। उसको मैंने 6 पॉइंट्स में समअप करने का कोशिश किया, क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच कैन बी कवर्ड इन दिस 6 टॉपिक। एक तो कोई ऐसी परिस्थिति सिचुएशन जो हमारे थॉट्स के लाइकिंग्स के अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, जो हमको वो हमको प्रॉब्लम्स लगती है। जैसे किसी ने कहा कि हम आज संडे को आपसे मिलने आना चाहते हैं या मिलने आ रहे हैं, और आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे टॉक में जाना है, और उनका फोन आ गया, तो क्या हो गया, हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो प्रॉब्लम जो हमारे मन को, हमारी चॉइसेस को सूट नहीं करती है, ऐसी सिचुएशन जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, फुलफिल नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इच्छा है करें लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम। कुछ ऐसी सिचुएशन कि जहां हमारी انسلٹ ہوئی ہو یا انسلٹ ہونے کی پوسیبلٹی ہو، جہاں ہم کو گلٹی فیل ہو رہا ہو، ایسی سچویشن، وہ بھی ایک طرح سے پرابلم ہوتی ہے ہمارے لیے. جیسا بتایا بیونڈ آور کنٹرول، سچویشنز وچ آر بیونڈ آور کنٹرول، جس میں ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں. اسپیشلی جب نیچرل کیلیمیٹیز ہوتا ہے، تو نیچرل کیلیمیٹیز میں کیا ہوتا ہے، وی آر ہیلپ لیس، ہم کچھ نہیں کر پاتے. پرکرتی کچھ سیکنڈز کے کھیل میں سب کچھ بدل دیتی ہے، اینڈ وی آر ہیلپ لیس بیونڈ آور کنٹرول. تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی پرابلم ہے. اور ابھاوگرست، ایسی سچویشن جہاں ہم ابھاوگرست محسوس کرتے ہیں، مینس وی ڈونٹ ہیو ریسورسز ٹو فلفل دیٹ سچویشن. سو ان دیٹ سچویشن آلسو وی فیل دیٹ اٹس اے پرابلم فار اس، کہ ہم ابھی اس میں کیا کریں، یہ تو ہم کر نہیں پا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں، تو ہمارے لیے ایک پرابلم ہے یہ. سم ٹائمز ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہم کو چھوٹنا ہوتا ہے، وی وانٹ ٹو آؤٹ آف دیٹ سچویشن، دیٹ پلیس، فرام دیٹ گروپ، پر کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹ نہیں پا رہے ہیں وہاں سے، ہم کو نکلنا ہے لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں. That is also a problem for us. So there are so many things. Normally جب یہ topic کا ہم چرچا کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کوئی بڑے پرابلمس کا ویژن بنا ہوا ہوگا کہ دیر آر بہت بڑی بڑی پرابلمس آئے تو ہی یہ بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. سی ان آور ڈیلی لائف دیر آر سو مینی انسیڈنسز، اسمال انسیڈنسز which creates problems for us. They are little barriers for us. They create blockages for us. So they are also problems. And if we start addressing those problems, convert those problems into opportunities, then ye hamara ek habit ban jayega mind ka, ki kaise problems ko opportunities mein convert karna hai. So don't wait for the big problem. کہ جب کوئی بڑا پرابلم آئے تب یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے، نہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو ڈیلی لائف میں ہو رہی ہے ہمارے، انہیں باتوں کو ہم اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرتے جائیں، تو یہ ہماری ایک مائنڈ کی ٹینڈینسی بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی. اینڈ دین اگر بڑی پرابلم بھی آئی تو ہم اس کو ایزیلی کنورٹ کر پائیں گے اس میں. نارملی وی آل آر ایکسپیرئنس کی پرابلمس آتی ہے لائف میں، جیسا ابھی ہم نے بتایا. نارملی ہاؤ وی ریسپونس ٹو دا پرابلم، اینگری، فیل اینگری اور سیڈ اینڈ ہیلپ لیس، وی فیل نروس، دین امپیشنٹ، ویری گڈ، ریسٹ لیس، نیگیٹو انرجی یا اریٹیشن، اور کچھ پیچھے کوئی بتا رہے تھے، ریزائن فروم سچویشن، کنارہ کر لیتے ہیں، لائی ٹو اسکیپ، اوائڈ، ریجیکٹ دا تھنگ، اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ کی بات سے مجھے ٹاپک تھوڑا چینج کرتا ہوں. اوور تھنکنگ کی بات سے ایک مجھے پریکٹیکل گھٹنا یاد آ رہی ہے. میں احمدآباد میں ایک سینٹر پر، برہما کماری سینٹر پر، دن میں بیٹھا ہوا تھا. اباؤٹ 2:30 کا ٹائم تھا. تو ایک ینگ بوائے اباؤٹ 26-27 وہ آیا سینٹر پر. سینٹر پر آ کے کہا کہ مجھے میڈیٹیشن سیکھنا ہے، آئی وانٹ ٹو لرن میڈیٹیشن. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں ایسا اندر سے فیل ہوا دیٹ یو وانٹ ٹو لرن میڈیٹیشن. دین ہی سیڈ کہ مجھے، میں ابھی ڈپریشن کی گولیاں لے رہا ہوں، میڈیسنس لے رہا ہوں، مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا میڈیٹیشن سیکھیے. دین آئی آسکڈ ہم کہ آپ کو ڈپریشن کیسے ہوا, کیونکہ تب تک مجھے ڈپریشن کا نام سنا ہے, اس کا تھوڑا بہت جانتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی یہ ہوتا کیسے ہے وہ میں نے پریکٹیکل ایگزامپل کسی سے سنا نہیں تھا. دین آئی آسکڈ ہم, تو اس نے بتایا کہ ہی واز اے سیلس مین ان اے جویلری شاپ ان احمدآباد, اور اس کو دوسرے سٹیز میں جویلری سپلائی کرنے جانا ہوتا تھا فروم ہز کمپنی. تو وہ سپلائی کرنے جاتا تھا, تو ایک دن وہ گجرات میں گاندھی دھام از اے پلیس, کانڈلا پورٹ, آپ نے یو مسٹ ہیو ہرڈ دا نیم کانڈلا پورٹ, تو اس کو وہاں پہ سپلائی کرنے جانا تھا. تو سوٹ کیس جویلری کا بھرا ہوا تھا, اینڈ ہی لگژری بس جو ہوتا ہے پرائیویٹ بسز, اس میں نائٹ جرنی میں جانا تھا احمدآباد میں, نائٹ میں بیٹھنے کا, صبح وہاں پہنچتے ہیں. تو وہ بیٹھ کے سو گیا, سلیپر کوچ تھا, سوٹ کیس رکھ کے وہ سو گیا. آفٹر فیو منٹ سوئے سوئے اس کو وچار چلا کہ یہ جویلری کا بھرا ہوا لگ بھگ اباؤٹ 5-7 lakh روپیز کا جویلری ہے اس میں, یہ بیگ مجھے اگر نیند آ گئی اور کسی نے یہ بیگ لے لیا, کوئی چورا کے چلا گیا, تو میرے کیا سچویشن ہوگا. اور پھر سوچا کہ میرا جو اونر ہے ہی ول ناٹ ایکسیپٹ مائی آرگیومنٹ کہ بھائی میں سو رہا تھا اور کوئی لے کے چلا گیا, ہی ول بلیم می اونلی اینڈ مائی سیلری از اونلی 12-13,000, ہاؤ آئی ول ری پے دس آل اماؤنٹ, اور میرے تو ابھی بچی جو ہے 2 سال کی بچی, وہ بخار تھا ابھی میں جب آیا آج گھر سے, تو اس کو بخار تھا, میری وائف تو ورکنگ ہے نہیں, وہ تو گھر میں کام کرتی ہے, یہ 5-7 lakh روپیز میں کہاں سے دوں گا, ایسا ایسا اس کو تھوٹ چلنے لگا. کچھ بھی نہیں ہوا, نتھنگ ہیپنڈ, بس ایک نیگیٹو تھوٹ چلا, اور وہ تھوٹ چلتے چلتے اس کو پھر نیند بھی آ گئی, پتہ نہیں چلا. سویرے 11 o'clock کو وہ جس کے یہاں سپلائی کرنا تھا, جس شو روم میں سپلائی کرنا تھا, اس شو روم والے نے احمدآباد والے شو روم والے کو فون کیا کہ بھائی آج آپ کا وہ جو سیلس مین آنے والا تھا وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے, کہاں ہے. دین دس احمدآباد گائی ہی سیڈ کہ وہ تو رات کو ہی بس میں نکل گیا ہے, اور ہی مسٹ ہیو ریچ دیئر ان گاندھی دھام, تو آپ اس ہوٹل میں انکوائری کیجیے, وہ ہوٹل فکس تھا جہاں وہ رکتا تھا, تو آپ اس ہوٹل میں انکوائری کیجیے اور چیک کیجیے وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. تو وہ گیا ہوٹل میں, انکوائری کیا, تو اس نے بتایا کہ آیا ہے, چیک ان ہوا ہے اور یہیں ہے روم میں. روم میں جا کے نوک کیا تو نہیں کھولا, تو ڈپلیکیٹ کی سے جب کھولا تو دیکھا تھا وہ انکانشیسلی بیڈ پر پڑا ہوا تھا. تو ترنت اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اور تھوڑا پھر جو بھی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو کانشیس آیا, پھر اس کو پوچھا کہ کیا ہوا, آپ کو کوئی نے پوائزن والی کوئی چیز کھلا دی یا کیا ہوا, بولے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, بس ایسے ہی مجھے ویکنیس آ گئی. لیکن اس دن سے وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا. دیر واز نتھنگ, لیکن نیگیٹو تھنکنگ تھنکنگ نیگیٹو سرکل سے کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا, اور تب سے اس کو گولیاں چالو ہو گئی تھی ساری. اس لیے سمٹائمس میں نے بتایا نا, ہم کیول پرابلمس کو مائنڈ میں ہی کریٹ کر کے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتے رہتے ہیں, اور ہماری انرجی اسی میں چلی جاتی ہے. جب ایکچوئل پرابلم آتا ہے تب ہمارے پاس انرجی نہیں ہوتی ہے, سو دیٹ وی کین فائٹ وتھ دیٹ پرابلم. سو اینی وے, جب پرابلم ہمارے ساتھ آتا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ کیسا ریسپانس ہوتا ہے, کسی نے پوزیٹیو ریسپانس نہیں بتایا, سبھی نے وہی بتایا کہ نیگیٹو ریسپانس ہی ہوتا ہے جب کوئی بھی پرابلم آتا ہے. تو جو بھی ریسپانس ہماری طرف سے ہوتا ہے وہ ہمارے اندر سے ہی ہوتا ہے ریسپانس, وہ تھرڈ پارٹی ریسپانس نہیں ہوتا ہے. جب کوئی سچویشن پرابلم ہمارے سامنے کریٹ ہوتی ہے تو وہ تھاٹ سے, پھر تھاٹ کے بیسس پر ورڈ, اور تھاٹس اور ورڈ کے آدھار پر پھر ہمارا ایکشن, یہ تینوں ہی چیزیں ہم اس کے ریسپانس میں دیتے ہیں. تھاٹس میں بھی آپ نے بتایا کہ کیسے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, اینگر ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں بھی کریٹ ہو جاتی ہے, نیگیٹیوٹی پوری. वर्ड्स में भी क्या होता है फिर, शाउटिंग और कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को फिर अच्छा नहीं लगता है, इंसल्टिंग वर्ड्स यूज हो जाते हैं। और एक्शन में रोना आ जाता है किसी किसी को, या बिल्कुल वो स्थान जैसे बताए ना, छोड़ के चले जाते हैं, दे लीव द प्लेस, तो नेगेटिव रेस्पॉन्स हो जाता है पूरा। यहां से ही हमको ये रेस्पॉन्स पार्ट जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी सिचुएशन। ये एक प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूरा खेल चेंज होता है इस प्रोसेस से। दिस इज अ गेम चेंजर प्रोसेस, यहां से गेम चेंज होता है। जब द सिचुएशन जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, दैट सिचुएशन इज स्टिमुलेशन फॉर अस, दैट सिचुएशन स्टिमुलेट अस, और उस स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स हम कैसे दे रहे हैं, दैट विल create our next action and that will create a blockage or that will create an opportunity. This response, very first response of any situation. Agar, kyunki hamara jo response hoga, that response will again create a next stimulation for us. It's become a cycle. And that stimulation, again we will response to that stimulation. So, ये तो एक कंफर्म प्रोसेस है कि देर इज इफ देर इज एनी स्टिमुलेशन देर इज अ रेस्पॉन्स। इट्स अ कंफर्म प्रोसेस विथ ऑल, जो भी हम यहां बैठे हैं, चाहे वो बहुत मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है और ए बिजनेसमैन, एनीबडी स्मॉल और एल्डर, लेकिन सबके लिए ये प्रोसेस तो फिक्स है, स्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स, दैट इज अ फिक्स प्रोसेस। आप चाहे या नहीं चाहे रेस्पॉन्स क्रिएट होता ही है एट थ्री लेवल, थॉट लेवल, वर्ड लेवल एंड एक्शन लेवल। दिस थ्री टाइप से हम रेस्पॉन्स करते हैं। नाउ इट इज आवर चॉइस, द इन बिटवीन देर इज अ थिंग दैट इट्स आवर चॉइस दैट हाउ वी रेस्पॉन्स। अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हुई और आपने नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, जो आप अभी बता रहे हैं वो नेगेटिव रेस्पॉन्स आपने दिया, तो नेक्स्ट स्टिमुलेशन क्या होगा, अगेन नेगेटिव होगा। जैसे किसी ने पानी का ग्लास गिरा दिया, घर में बच्चा है, पानी का ग्लास गिरा दिया, हमने जोर से उसको डांटा, पता नहीं चलता है क्या। अभी वो जो स्टिमुलेशन उसके माइंड पर हुआ, हमारे रेस्पॉन्स है, वो क्या कहेगा, आपको पता नहीं चलता है रास्ते में ये क्यों रखा आपने, तुरंत नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज रेडी फॉर यू। मुझे एक बात याद आ रही बच्चों के आधार पर कि एक बार एक फादर थे, वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एडवाइस देते रहते थे कि स्टडी स्टडी हार्ड दिस दैट, अभी एग्जाम आ रहा है बहुत स्टडी करो आप, फिर उसको ऐसे एग्जाम्पल भी देते थे। तो एक बार बहुत ज्यादा हो गया तो उसने फादर ने कहा बच्चे को स्टडी कर, स्टडी एग्जाम आ रहे हैं, तेरी जब तेरे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने वहां यूके में जाके स्टडी किया था और नंबर वन लिया था, फिर आखिर बच्चे से रहा नहीं गया, वो स्टिमुलेशन कैसे रेस्पॉन्स कैसे काम करता है, स्टिमुलेट करता है, तो फिर बच्चे से रहा नहीं गया, उसने कहा पापा जवाहरलाल नेहरू जब आपके जैसे थे ना भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। सो रेस्पॉन्स, हमारा रेस्पॉन्स नेक्स्ट स्टिमुलेशन क्रिएट करता है, तो नेगेटिव रेस्पॉन्स नेगेटिव स्टिमुलेट करता है। और सबसे पहले माइंड में क्या आता है, क्यू ऑफ क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट इज दिस, हाउ इट हैपन, हु डिड इट, Why you did this way? ऐसे पूरे questions का क्यू हो जाता है, और जब question के क्यू में हमारा mind फंस जाता है ना, वो confused हो जाता है, اس کو سولوشن نہیں دکھائی دیتا ہے, وہ بس کوشچنس میں ہی اس نیٹ میں ہی گھومتا رہتا ہے. اس کے بجائے وی ہیو این آپشن, نو ڈاؤٹ اس آپشن کے لیے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اینڈ وی ول لرن ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ آپشن, کہ ہم کوئی بھی سچویشن جس کو ہم پرابلم ڈیفائن کر چکے ہیں دیٹ اٹس اے پرابلم, جو سکس آپ کو باتیں بتائی, ناٹ فیوریبل ٹو اس, بیونڈ آور کنٹرول, دس آل تھنگ, وی امیڈیٹ ریسپانس. گیتا کا ایک سینٹینس ہے, وہ آپ پکا یاد کر لو, وہ آپ کو لگے گا کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہوتا ہے بہت بار اس کے حساب سے نہیں ہے, لیکن وہ صحیح ہے اور وہ آپ کو اپلائی کرنا ہی پڑے گا ان ایوری سچویشن. جو ہوا اچھا ہوا, جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, اور جو ہوگا, یہاں بابا جو ہے نا نارمل دنیا میں کہتے ہیں جو ہوگا وہ اچھا ہوگا, لیکن بابا اس انسٹیٹیوشن میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے آپ کو یاد رکھنی پڑے گی اگر آپ کو ریسپانس چینج کرنا ہے امیڈیٹلی, تو اور کرنا ہی پڑے گا. اف یو وانٹ ٹو کریٹ این اپرچونیٹی یو ہیو ٹو چینج یور ریسپانس, یور امیڈیٹ ریسپانس ایٹ تھاٹ لیول. دا امیڈیٹ ریسپانس از ایٹ تھاٹ لیول, اینڈ وی ہیو ٹو چینج دیٹ امیڈیٹ ریسپانس ایٹ تھاٹ لیول. ٹھیک, کوئی بات نہیں, لیٹ اٹ ہیپن, لیٹ می سی, لیٹ می ویٹ, اوکے گڈ. یہ سینٹینس اپنے آپ سے بولنا ہی پڑے گا, اٹ ٹیک سیکنڈ اونلی, لیکن یہ آپ کو ایک پریکٹس کریٹ کرنی پڑے. بھلے اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, پھر بھی اگر آپ کو اپرچونیٹی کریٹ کرنی ہے, اگر آپ کو پرابلم کی ویشیس سرکل میں نہیں پھنسنا ہے, تو آپ کا فرسٹ ریسپانس یہی رکھنا پڑے گا, پوزیٹو. وہ کیسے رکھنا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے, لیکن یہی پوزیٹو ریسپانس رکھنا پڑے گا کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا. لیٹ می سی, اچھا, ایسا کر کے, اچھا کر کے آپ کو اس سمے ریسپانس دینا پڑے گا. یہ ہمارا سب سے پہلا پوزیٹو ریسپانس ہونا چاہیے. جب یہ پوزیٹو ریسپانس ہوگا تو نیکسٹ اسٹیمولیشن جو ہے نا وہ بھی جو نیگیٹو ہونے والا تھا, یا تو اس کا جو ڈینسٹی یا جس کا کہیں نا اس کا پریشر وہ نیگیٹیوٹی کا وہ بہت کم ہو جائے گا, یا وہ پوزیٹو میں بھی کنورٹ ہو جائے گا, امیڈیٹ اس کا افیکٹ آئے گا. میری پریکٹیکل ایک بات بتاؤں, اس سمے میں ٹو ویلر لے کے احمد آباد ایک روڈ پر جا رہا تھا, تو میں نے روڈ کراس کیا, اٹ واز مارننگ 7:30 اور لائک دیٹ. میرا جب یہ مرلی یہاں کلاس پورا ہوتا ہے ستسنگ, اس کے بعد میں واپس اپنے روم پر جا رہا تھا, تو ایک لیبر سائیکل سے اپنے ورک پلیس پر جا رہا تھا سویرے سویرے سائیکل سے, تو اسکوٹر اس کو ٹچ ہو گیا, ٹچ ہوا تو وہ گر گیا, تو اٹھتے ہی وہ چلانے لگا, گالی دینے لگا. غلطی اس کی تھی, وہ بالکل رونگ سائڈ سے آ کے کراس کر رہا تھا, وہ گر گیا, لیکن اب وہ چلانے لگا. میں نے کہا اگر میں آرگیومنٹ کروں گا ابھی تو وہ ملٹیپل ہوگا اور کہیں ہاتھ بھی چل جائے گا اس کا. میں نے امیڈیٹ کہا کہ سوری کہ میرے سے بریک نہیں لگا اور آپ کو ٹچ ہو گیا, آگے سے دھیان رکھیں گے. بھلے غلطی اس کی ہوتے ہوئے سچویشن ایسی تھی کہ مجھے جھکنا پڑا تھوڑا, میرا کچھ نہیں بگڑا اس میں جھکنے میں, لیکن اس کے من میں جو اینگر تھا وہ اینگر بالکل ایک دم سے شانت ہو گیا, اور ترنت اس نے کہا ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے. اس کو پھر ریلائز بھی ہوا غلطی میری تھی, لیکن اف آئی مسٹ ہیو ریسپونس, اف آئی مائٹ ہیو ریسپونس نیگیٹولی, تو امیڈیٹ وہ اپنی غلطی کبھی سویکار نہیں کرتا, ہی وڈ ہیو پروو ہمسیلف کہ دیٹ یو آر رانگ, سارا سچویشن چینج ہو جاتا. لیکن میں نے صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا, اینڈ سچویشن, آل سچویشن چینج. تو یہ ریسپانس یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا, एंड दैट रेस्पॉन्स वो पॉजिटिविटी हमको लर्न करना पड़ता है. आप देखिए यहां पर आसपास में इफ यू विजिट इन द तेलंगाना आंध्रा कर्नाटका देर आर सो मेनी फॉरेस्ट. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी फॉरेस्ट. क्या कोई फॉरेस्ट को कल्टीवेट करने के लिए गया है? फॉरेस्ट को किसी ने कल्टीवेट किया है या वो स्पॉन्टेनियस ऐसे ही उग गए? ऐसे ही उग जाते हैं ना. थॉर्न्स जो होते हैं, कांटे जो होते हैं, उनको कोई कल्टीवेट नहीं करता है, कांटे अपने आप उग जाते हैं. और एक छोटा सा गार्डन, आप जब इस शांति सरोवर में आपने एंट्री लिया होगा तो कुछ गार्डन्स देखे होंगे. यू नो कितना एफर्ट करना पड़ता है उस गार्डन को बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. हाउ मच एफर्ट वी हैव टू डू, डेली एफर्ट. तो हमारा मन जो है ना, उसमें भी नेगेटिविटी के थॉर्न्स, कांटे जो है ना, वो अपने आप उग जाते हैं. जो सिचुएशंस है, जो सर्कल है, जो हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं, उससे नेगेटिविटी के तो ऑटोमेटिक उगते ही रहते हैं. उसको कोई कल्टीवेट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है नेगेटिविटी के लिए, थॉर्न के लिए. लेकिन आपको अगर पॉजिटिव बनना है, अगर आपको फूल उगाने हैं, अगर आपके मन को सुमन बनाना है, माना गार्डन बनाना है, देन यू हैव टू डू एफर्ट. यू हैव टू डू एफर्ट. पॉजिटिविटी के लिए हमको कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि सिंपल एफर्ट से काम चल जाता है. इट मस्ट बी अ कॉन्शियस एफर्ट, वो हमको करना पड़ेगा और वो हमको यहां करना है. तो मैंने ये बोला ना, दिस इज अ गेम चेंजिंग सिचुएशन. जो फर्स्ट रेस्पॉन्स हमारा होता है, दैट इज अ गेम चेंजिंग रेस्पॉन्स. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर हूं. लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा. प्रेजेंट पॉलिटिशियन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि मैं गुजरात में रहा हूं, गुजरात में मेरी सीए फर्म है, एंड सिंस 1991 आई एम इन गुजरात. सो आई हैव सीन हिम क्लोजली, हिज एक्टिविटीज एंड हिज ऑल वर्क स्टाइल एंड एवरीथिंग. तो जब वो सीएम बने और उसके बाद की सिचुएशंस में उन पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हुए विद इन द पार्टी एंड फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो. टू मच. हम तो देखते थे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे, डेली वहां एजिटेशन होते थे, वो सब देखते थे. अहमदाबाद में ही रहता था मैं तो. लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो भी मुझे पत्थर मारता है, मैं उस पत्थर को ब्रिज बनाने में लगा देता. मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता हूं, लेकिन उस पत्थर को ब्रिज बनाने में लगा देता हूं. एंड ही डिड दिस, ही इज डूइंग दिस. और उसके कारण से, उसकी इस हैबिट के कारण से वो आज पीएम बनते हैं और आज वर्ल्ड में एक वेल नोन पर्सनालिटी, सारा वर्ल्ड उनको मानता है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट. कि कोई भी पत्थर फेंके लेकिन उसको हम ब्रिज बनावे, न कि उसको वैसा ही रेस्पॉन्स देवाते, तो चेंज गेम चेंज हो जाता है. प्रॉब्लम्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल महात्मा गांधी का भी है. उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया जब वो साउथ अफ्रीका गए थे. He visited South Africa first time for his client's work. और उनको वहां एक ट्रेन से अंग्रेजों ने फेंक दिया था कि आप ये फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, and he was thrown out from the train. अब वो उनके लिए कितनी बड़ी सिचुएशन थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम अगर कहें, सिचुएशन कहें. He was an advocate and passed from London. और उनको इस प्रकार से ट्रेन से फेंक दे रहे, और यंग एज, वो चाहते तो उसको उस तरह से नेगेटिव रेस्पॉन्स कर सकते थे, लेकिन उस सिचुएशन में उन्होंने एक फर्म डिटर्मिनेशन किया اور اس فرم ڈیٹرمینیشن نے آگے اتنا کام کیا جو انگریزوں کو بھارت سے پھینک دیا. ان کو کیول ٹرین سے پھینکا اور انہوں نے انگریزوں کو بھارت سے پھینک دیا. سو سچویشنز تو ہماری لائف میں آتی ہی رہے گی, ہم اس کو کس پرکار سے چینج کرتے ہیں وہ ہمارے تھوٹس پر, ہمارے ڈیٹرمینیشن پر فرق پڑتا ہے. مدن موہن مالویہ, یو مسٹ ہیو ہرڈ دس نیم, ویل نون ایجوکیشنسٹ اور ریفارمر ایٹ دا ٹائم آف آور فریڈم. اس سمے یہ مدن موہن مالویہ نارتھ انڈیا کے بہت اچھے ویل نون ویکتی تھے. انہوں نے کاشی ہندو وشو ودیالیہ کی استھاپنا کیا تھا. اس کی استھاپنا کے لیے ان کو منی چاہیے تھا, بہت پیسہ چاہیے تھا. سو ہی واز وزٹنگ ویریئس پلیسز, ہی واز میٹنگ ویریئس پرسنالٹیز ٹو گیٹ دا ڈونیشن. ان دس پروسیس ہی کیم ٹو حیدرآباد آلسو اینڈ ہی میٹ نظام آف دا حیدرآباد آف ایٹ دیٹ ٹائم. ان کی جو سبھا تھی نظام کی سبھا, اس سبھا میں وہ گئے اور ان کو پورا پروجیکٹ بتایا کہ دس وے آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش دا کاشی ہندو وشو ودیالیہ یونیورسٹی. سمو نظام کو پسند نہیں آیا, وہ بہت اریٹیٹ ہو گئے. انہوں نے اپنا جوتا کھولا اور مالویہ جی پر پھینک دیا, سبھا کے بیچ میں اپنا جوتا مدن موہن مالویہ پر پھینک دیا. اب وہ سچویشن آپ جسٹ ویژولائز دیٹ سچویشن کہ کتنا ان کو اپمان ہوا ہوگا اس سبھا کے بیچ میں. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ بہت خوش ہو گئے, وہ بہت خوش ہو گئے ایسی سچویشن میں. وہ جوتا لے لیا انہوں نے جو ان پر پھینکا گیا تھا اور وہ جوتا لے کے چلے گئے. جوتا لے جا کے دلی میں انہوں نے اس کو آکشن پر رکھا اور اس کی پبلسٹی کی کہ یہ نظام جی کا جوتا ہے اور اس کا آکشن کیا جا رہا ہے. وہ نیوز نظام تک پہنچی کہ میرے جوتا کا آکشن ہو رہا ہے دلی میں. انہوں نے اپنے یہاں کا جو فائنانس دیکھنے والا تھا اس کو بہت سارا منی ویلتھ لے کر وہاں بھیجا کہ آکشن میں وہ جوتا ہمیں ہی خریدنا ہے. اینڈ آفٹر اسپینڈنگ اے لوٹ آف منی دے ٹیک دیٹ شوز بیک, اور ان کو جو منی چاہیے گا وہ اس سے مل گیا. سی سچویشنز آتی ہے, سبھی کے سامنے آتی ہے, ہمارے سامنے بھی آتی ہے, لیکن اس سچویشن کو ہم کیسے ریسپونس کرتے ہیں پورا گیم وہیں سے شروعات ہوتی ہے. ایک ویڈیو آپ سب نے دیکھا ہوگا, پھر بھی آپ اس کو ریپیٹ کر دیکھیں. بولو
شچ میں and watch this tape because Pastor Rick had one request for tonight's show to include a man who he says is one of the best examples of winning the hand you're dealt. This is going to shut your mouth. It's going to shut your mouth. Just close it right now. Take a look at this.
Born in Australia without arms or legs, 30-year-old Nick Vujicic has become a symbol of triumph against all odds. His inspiring YouTube videos have been watched over 100 million times.
It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
But the road to self-acceptance was excruciating for Nick. For years, he was harassed and tormented at school. When he was 10, Nick attempted suicide. After years of feeling worthless and alone, Nick's awakening came while reading an article about a disabled man who refused to let physical limitations hold him back. In that moment, Nick says he discovered the power to take control of his life, and he has. Today, Nick surfs, he snorkels, he golfs, and plays soccer. He's traveled to 44 countries with his message of hope.
Even the worst part of your life can come together for the good.
And less than a year ago, Nick married the love of his life and danced at their wedding.
Say hello to Nick. We're standing up for Nick. Now, this is what's so unbelievable. As you've heard, people complain about the spots on their face and people complain about not having a boyfriend and not being able to have the mates of their life. What happened to you that you were able to take all of your chemistry, being born with no arms and no legs, take your connections, your relationships, your life circumstances, mm-hmm. your state of consciousness, and then choose, make the conscious choice that you were going to take all of that which the rest of the world looks at, you know, undeniably as a pretty bad hand, and that you were going to turn it into something, you were going to be exalted by it. What happened to you that you were able to do that?
Oprah, I know that you love to think out of the box and have things outside of the box on your show.
Yeah.
And I know that you love illustration. So if I may illustrate in about 180 seconds, can I do something a little crazy, but it'll be powerful?
Go
Is that
right
cool?
There.
You got a camera behind me, right?
Yeah.
I'm going to show you. Come. So this step right here, is there enough light here?
Okay.
The chemistry. I was born without arms and legs. The chemistry I could not change. In my life, I know that God didn't give me this pain, but what the enemy tried to use for bad, he turned into good.
Yeah.
Man, the connections. I want to tell Porsche. Look, I'm a guy, I love cars, okay? And I love Porsches more than Ferraris, okay? And I want everyone to know that we are wonderfully and fearfully made. And until you can actually understand that we are all wonderfully and fearfully made from God, I want you to know that you will always be trapped and chained and you will be stopped. But when you have the incredible power of faith and action, nothing holds you back. And you're beautiful just the way that you are. No worries. For me, I felt the connection.
Yeah.
For me, in my life, I'm thinking, man, I'm not going to get married. I can't even hold my wife's hand. What connection am I going to have? But you know what? All things come together for the good for those who love Him. Man, this is a little bit high. I'm going to break my arm, man. This is pretty crazy. All right.
I'm going
to break my arm.
Circumstances. Being born without arms and legs, man, it's all about choice. You asked me what it was. I had parents who were my heroes. They always said, you can either be angry for what you don't have or be thankful for what you do have. Do your best and God will do the rest. And consciousness, because I gave my life to Lord Jesus Christ and the renewing of my mind, I knew that I could be unstoppable.
लाइफ में इससे बड़ी सिचुएशन और क्या हो सकती है, एडवर्स सिचुएशन. लेकिन इस एडवर्स सिचुएशन में भी अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लाके कितनी क्रिएटिविटी उन्होंने लाइफ में ले आए, कितना आगे बढ़ गए. हम भी कर सकते हैं. प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं. आई विल रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. प्रॉब्लम ब्रिंग विथ देम देयर सॉल्यूशन. ऐसा कहा जाता है, ये सेइंग आपने सुनी होगी, कि कोई भी ताला चाबी के बगैर नहीं बनाता. हर ताले की चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का समाधान होता है. केवल हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है उसके लिए. वी हैव टू डू लिटल एफर्ट फॉर दैट. आपका प्रैक्टिकल अनुभव है या नहीं है, उसमें हमको कितना पेशेंस रखना पड़ता है कि अगर आपके किचन में किसी ने आपको किचन दिया कि भाई ये वो लॉक खोल दीजिए और उसमें 20 कीज है, और आप जब वो लॉक खोलने जाते हैं तो 18 कीज से आपका लॉक नहीं खुलता है. आप लगाते जाते फिर भी नहीं खुला, आप लगाते जाते और लास्ट की से लॉक खुलता है. उतना पेशेंस हमको रखना पड़ता है कि sometimes we have to wait till the last thing to happen. और उससे हमारा solution मिल जाता है. Problems came to teach us certain lessons and are for ultimate good. Problems are not permanent. ये तो हमने realize किया ही होगा कि वो temporary होता है और वो situation चला जाता है. No problem is greater than the person concerned. लेकिन what we have do, हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं प्रॉब्लम के सामने और प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं. जैसे बताया ना ओवर थिंकिंग, वो राई का पहाड़ कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनता है, जस्ट फ्रॉम आवर थिंकिंग इटसेल्फ, कि हम उसको सोचते 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 बहुत बड़ा कर देते हैं. डू नॉट इमेजिन प्रॉब्लम बट फेस देम एज दे कम सो देट यूर कैपेसिटी टू resist problems will increase and your maturity will increase. Cope with one problem at a time and look for the silver lining in the midst of the problem. Normally what we happens, जब कोई situation खड़ी होती है तो वो situation तो एक ही होती है, लेकिन हम imagine करके और भी उसके साथ और कुछ situations create कर लेते हैं हमारे mind में, वो फिर सभी situation को एक साथ solve करने का try करते हैं, वो नहीं होता है. उसके बजाय आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो. आपके आपको 10 सिचुएशंस आपके सामने दिखाई दे रही है, यू एड्रेस वन बाय वन और आप देखेंगे कि इजीली सारी सॉल्व हो जाती. लेकिन एक साथ सारी सिचुएशन को सामने रख के फिर उसको सॉल्व करने जाते हैं, नहीं होता. देयर इज अ सेइंग, वी शुड स्टार्ट विद द नॉन थिंग एंड देन गो टू अननोन. तो जो सिचुएशन हमको लगता है कि हाँ इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, उसको हम एड्रेस करते जाए, रेस्ट जो है वो हो जाएगा आगे चलते चलते प्रोसेस में. व्हेन प्रॉब्लम्स कम, एडमिट, एक्सेप्ट, एडॉप्ट एंड पॉजिटिवली एक्ट ऑन लॉस, फेलियर, एक्सीडेंट, डिजीजेस, डिफीट, कैलमिटीज एज दे आर पार्ट ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट इलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एंजॉय लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. अगर आप ये वेट करते हैं कि मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा फिर मैं बहुत खुश रहूंगा, देन इट्स योर ड्रीम ओनली. लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स पूरी होने वाली नहीं है. डेली आपको एक दो नई चीजें दिखाई देगी जो आपको प्रॉब्लम लगेगी. समटाइम्स वो प्रॉब्लम होती भी नहीं है, वी जस्ट थिंक दैट दे आर प्रॉब्लम, बट सिंस दे आर सिचुएशन वी थिंक दैट इट्स अ प्रॉब्लम. तो हमको लाइफ एंजॉय करना है विद दिस ऑड सिचुएशंस, कन्वर्टिंग दोज ऑड सिचुएशंस इन फेवरेबल सिचुएशंस. वी कैन नॉट इलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एंजॉय लाइफ, हेंस एंजॉय द लाइफ इन द मिडस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एंजॉय द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. एंजॉयिंग द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटीज विल कम ऑन द वे. व्हेन प्रॉब्लम्स कम, डी लर्न एंड ली लर्न लाइफ एंड लाइफ सॉल्यूशंस and enrich in experiences of different kinds. When problems come, learn new lessons on life and convert it into opportunities for growth. When there is a block in life, then only we start thinking of alternatives. Normally kya hota hai, agar sab kuch smooth chal raha hota hai तो हम एक्स्ट्रा सोचते भी नहीं है और उसी में फेल करते जाते हैं. लेकिन जब कुछ ब्लॉकेज आता है तब नए रास्ते खुलते हैं. तो ब्लॉकेज आना भी जरूरी है कि जिससे हमारे सामने और नए रास्ते खुले और हम और अच्छी सिचुएशन में जा सके. एंड डिफरेंट ऑप्शंस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. थॉमस अल्वा एडिशन फेल्ड 1000 टाइम टू मेक ए बल्ब. Somebody told him that he has failed to make a bulb 1000 times. He said, no, I learned how to make a bulb in 1000 ways. So failure ko hum permanent nahi samjhe. Lekin agar hum efforts karte rahe to humko success zarur milegi. Think that whatever happens is for good. Be an optimist. Look for opportunities. So these are the things ki ye kuch thoughts hain jisko hum practical hamari life mein apply karte hain to hame result milta hai. Problems come to us not to tumble us but to humble us, enrich in humility and simplicity, where a lot of opportunities will be waiting for us. Think of the advantage and accept the situation. When we cannot change a person or situation, connected with the event, wait for the right time to take on to the problem, to convert it into opportunity. Always practice organized thinking. Avoid waste, negative and vicious thoughts, so that the mental frame is clean and tidy, so that we have an upper hand to choose the right thoughts required for the moment to create opportunities. So abhi hum aage dekhenge ki kis prakar se humko us situation ko handle karna hai aur kaise humko wo positivity develop karni hai, wo habit develop karni hai. Discipline to convert problems into opportunities. Enforce self discipline. ये प्रैक्टिस से होगा कि हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, हमारे थॉट पैटर्न को, हमारे वर्ड्स को, हमारे एक्शन को डिसिप्लिन वे में उनको करने दें. वो मेडिटेशन से कैसे हो सकता है, दैट वी विल सी. थिंक एक्यूरेटली, क्रिएटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली. कंट्रोल आवर अटेंशन. Learn from adversity and adversaries and defeats. Cultivate creative vision. Find time for self-renewal and self-talk. Have an orderly life at all the time. Nature की ओर से, लोगों की ओर से, हमारे ऑफिस की ओर से, फैमिली मेंबर्स की ओर से सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है. उसके लिए एक बहुत अच्छी सेइंग है, उन्हें जो जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशिया बनाने की. माने हमको छोड़ के नहीं जाना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन भले वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे. तो अभी हम क्या करें, कैसे उस सिचुएशन को चेंज करें, हाउ वी चेंज दैट सिचुएशन, व्हाट इज दैट प्रोसेस. द फर्स्ट रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन, फर्स्ट रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन विथ थैंक्स. लेट थैंक द पर्सन, थैंक द सिचुएशन, थैंक द प्लेस. जो भी हमारे सामने परिस्थिति है उसको हम थैंक करें, कोई बात नहीं. वेलकम, आप आए ना, वेलकम, थैंक यू. नाउ वी विल थिंक सर्टेन बिगर, सर्टेन इन डिफरेंट वे. ये एक फर्स्ट पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमारा बहुत जरूरी है. जो सिचुएशन आई, एक्चुअली एक अलग सेशन है, वो कभी आपका यहां अरेंज करेंगे, कि जो भी सिचुएशन आ रही है वो हमारे कारण ही आ रही है, वो हमारे ही कर्मों का फल है. जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हम अभी ब्लेम दूसरों को कर रहे हैं उसके लिए कि उसने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बट वो हमारे ही कारण हो रही है. वो एक पूरा अलग चैप्टर है जिसको अलग कोई सेशन आपका यहाँ पे अरेंज करेंगे, लेकिन ये है कि अभी आप इतना समझ लीजिए कि वो सिचुएशन चूंकि हमारे कारण ही आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ अस ओनली, यू थैंक देम, थैंक द सिचुएशन and the person who created this. Hinduja families, you must have heard the name of Hinduja. Unhone ek book likhi thi success par, steps of success karke. Uske preface mein unhone likha tha ki I thank to all those persons who created problems for me, and because of them I am today, I am Hinduja. उन्होंने अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की हुई होती तो मैं आज हिंदुजा नहीं बनता. सो वी वेलकम द सिचुएशन एंड थैंक देम. दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप. next stimulation ke liye, detach yourself. How to detach? यहां पर आपको ब्रह्मा कुमारी मदद कर सकती है. हमें अपने आप को पहचानना होगा. मैंने बताया ना कि अगर मन को बगीचा बनाना है, गार्डन बनाना है, हम माइंड को गार्डन बनाना चाहते हैं, तो हमको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा. और इस कॉन्शियस एफर्ट में ये पहली स्टेप है कि हमें अपने आप को समझना पड़ेगा. हु एम आई, मैं कौन. जो ये ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी का 7 डेज कोर्स है, उसमें फर्स्ट कोर्स यही बताया जाता है, हु एम आई. जो हम अपने आप को बॉडी देख रहे हैं वो तो हम हैं, लेकिन हम इस बॉडी को ड्राइव करने वाली एनर्जी, इस बॉडी को रूल करने वाली एनर्जी, इस बॉडी की ओनरशिप हमारे पास है. वी आर दैट पावर, दैट एनर्जी. Call them soul, रूह, आत्मा. वो हम हैं. और अगर आपका ये प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को आत्मा समझने का प्रैक्टिस किया हुआ है आपने, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति के रूप में, तो आपको ये पॉजिटिविटी डेवलप करना बहुत इजी होगा. जब तक हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, तो इस बॉडी का जो रिलीजन है, चेंजिंग होते रहना, हम उसी चक्कर में रहते हैं. और जो ये नेगेटिव टेक्स्ट हैं, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिव अप, ये सब चीजें आती रहेगी अगर हम अपने आप को बॉडी समझते रहेंगे तो. अगर हमको पॉजिटिविटी में जाना है, तो हमारी रियल आइडेंटिटी हमको पता होना चाहिए. आप कहते हैं, इसका बहुत सिंपल है, आप कहते हैं ये मेरा हाथ है. आप कहते हैं ये मेरा हाथ है. अच्छा, ये कहते हैं ये मेरा लैपटॉप है. जब आप ये कहते हैं कि ये मेरा लैपटॉप है, तब कितने चीजें हो गई यहां पे, जहां पर मेरा शब्द आया, माइन, दिस इज माइन लैपटॉप. व्हेन आई से माई लैपटॉप, देयर आर टू थिंग्स, माईसेल्फ एंड लैपटॉप, टू डिफरेंट थिंग. देन आई यूज द वर्ड माई लैपटॉप. आई एम नॉट लैपटॉप, बट इट इज माई लैपटॉप. इन द सेम वे वी से दिस इज माई हैंड. माई हैंड मीन्स माई सेल्फ एंड माई हेड. देर आर टू डिफरेंट थिंग. दिस इज माई हेड मीन्स माई सेल्फ एंड माई हेड. देर आर टू डिफरेंट थिंग. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस माई मी. Who am I? जो ये कह रहा है कि ये मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरा पैर है, वो मैं कौन. उस मैं को रिकॉग्नाइज करना, उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. तो आप उसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट करनी है, उसके लिए आप ये आत्मा का लेसन, सोल का लेसन एक बार यहां आके आप जरूर सीखना. क्योंकि ये 45 मिनट का लेसन है पूरा, उसमें पूरा डिटेलिंग बताते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, यहां ब्रिकुटी में विराजमान, फॉरहेड, और यहां से उस बॉडी को मैं कंट्रोल कर रही हूं. यहां से मैं विजुलाइज करती हूं, फीलिंग मेरे में आती है, वो सब चीजें यहां आत्मा में होती है. तो उसको ट्रू आइडेंटिटी हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं. वो जब हम अनुभव कर लेंगे, तो फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना बहुत इजी होगा. क्यों? क्योंकि आत्मा की जो बेसिक क्वालिटीज हैं, लव, पीस, पावर, नॉलेज, प्यूरिटी, जॉय, हैप्पीनेस, ये आत्मा की बेसिक क्वालिटीज है. जैसे आप दिन में 5-10 times पानी पीते होंगे, पीते हैं ना कुछ पानी 5-10 times, 2-3 बार भोजन भी करते हैं. क्यों करते हैं हम? क्यों पानी पीते हैं? क्यों भोजन करते हैं? क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं सारा दिन? सारा दिन श्वास चालू रहता है. वाई वी टेक दिस ऑल थिंग? क्योंकि ये बॉडी उससे बना हुआ है, 5 elements से बॉडी बना हुआ है, इसलिए ये चीज हमको लेना पड़ता है. जैसे ही बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, ये एलिमेंट्स को हमको लेना पड़ता है. ऐसे ही मैंने जो ये सेवन क्वालिटीज बताई, वो सोल सेवन क्वालिटीज से बनी हुई, ये उसकी कोर वैल्यूज है आत्मा की. इसलिए हमको लव, हमको पीस, हैप्पीनेस, जॉय ये चाहिए. और अगर हम अपने आप को आत्मा समझने लग गए, वो प्रैक्टिस हो गई, तो ये चीज अंदर से ही हमको मिलेगी और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो सकेगा. इसलिए ये आप, हम इस शरीर से अलग आत्मा है, ये हमको वो डिटेच होके हमको न्यारा होना है. और जो वो इमीडिएट नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा था ना, वो यहीं पर बंद होगा. जैसे ही हमने आपको डिटेच किया, अपने आपको किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, जबरदस्त इंसल्ट कर दी, लेकिन हम एक सेकंड के लिए डिटेच हो गए कि नहीं, ये बॉडी नहीं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट सॉल, और इमीडिएट फुल स्टॉप लग जाएगा हमारे नेगेटिव रेस्पॉन्स को, इमीडिएट फुल स्टॉप लग जाएगा. सो ये प्रैक्टिस आपको करनी है. यहां पर आपने देखा होगा कि जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम एकदम साइलेंस, क्वाइट हो जाएंगे, स्टीलनेस आ जाएगा एकदम से. और जब पानी एकदम स्टील होता है तो हम उसके अंदर से कुछ देख सकते हैं, उसमें भरे हुए खजाने हम देख सकते हैं. लेकिन अगर वहां वो वाइब्रेट हो रहा है, पानी हिल रहा है, तो हमें अंदर की चीजें नहीं दिखाई देगी. तो सॉल्यूशन इज देयर इन द माइंड, आत्मा में है, मन में सॉल्यूशन है. लेकिन चूंकि हम उस सिचुएशन के रेस्पॉन्स में हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो हमारा वो रेस्पॉन्स, हमको वो पानी हिलने से रेस्पॉन्स नहीं मिलता, हमको वो अंदर से सॉल्यूशन नहीं मिलता है. लेकिन जैसे ही हम शांत होते हैं, हमको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा. और ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, जो हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए ए बी सी डी सॉल्यूशन सोच रहे हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन ए बी सी डी हो सकता है. अगर हम शांत हैं, अगर हमने मेडिटेशन सीख लिया है उस सुप्रीम पावर के साथ, जो मैं पावरफुल हूं, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना सीख लिया है, तो हमको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन मिलेगा. एंड देट विल बी अ वेरी वंडरफुल एंड इजी सॉल्यूशन. वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन हमको सीखना पड़ेगा. और खुशी का खेल खेले, ये इट्स ए वंडरफुल प्ले. एक गुजराती में नाटक है, आप तो गुजराती नहीं जानते हैं, और उसका इंग्लिश सबटाइटल नहीं है, इसलिए मैंने लाया नहीं, मैं आपको दे नहीं रहा हूं. नियति करके एक नाटक है, हमने देखा बहुत. इन एवरी सिचुएशन कैसे हम उसमें से एक छोटी सी कोई पॉजिटिविटी उठा लेते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया है खुशी का खेल. सिचुएशन बहुत एडवर्स है, लेकिन कोई छोटी सी बात पॉजिटिव उठा के खुश हो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है. एंड इट्स ए फैक्ट, हमको अगर लाइफ में खुश होना है तो हमको ये खेल खेलना ही पड़ेगा. अगर हमने वो नेगेटिव खेल खेला, रोने का खेल खेला, दुखी होने का खेल खेला, तो लाइफ उसी में चली जाएगी. हमको खुशी का खेल खेलना ही पड़ेगा. इससे एक और इम्पोर्टेंट बात, खुशी की खेल के साथ, मतलब पॉजिटिव सोचे तो ही वो खुशी का खेल खेल सकते हैं. और अपना विजन, अपनी जीत का विजन देखें आप. मतलब सिचुएशन आ गई आपके सामने, देयर इज अ सिचुएशन वेर यू फील दैट इट्स ए प्रॉब्लम फॉर मी, दैट सिचुएशन इज, उस प्रॉब्लम में आप एक विजन क्रिएट करें कि कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं. यू आर द विनर. वो 30 सेकंड का, 1 मिनट का एक वीडियो अपने अंदर एक विजन आप क्रिएट कर लें, और उस विजन में आप फेथ रखें कि नहीं, मैं जीत गया हूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया हूं और मैं जॉय एंजॉय कर रहा हूं. वो भले उस समय आपको एक काल्पनिक वीडियो है, लेकिन आप वो वीडियो देखिए, अपना ही जीत का वीडियो, विजन एक क्रिएट करिए. एक हकीकत में आपको बता दूं, आज जो भी सिचुएशन आपके सामने है, वो आपकी ही विजन में क्रिएट की हुई है. वो कहीं कहीं से आपने पहले उसके बारे में कुछ सोचा हुआ है. आपका विजन ही प्रैक्टिकल हो रहा है. इसलिए आप अभी जो है ना, पॉजिटिव विजन कीजिए आपके फ्यूचर के लिए. बिजनेस अच्छा हो जाएगा. ये जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, बहुत बहुत स्ट्रांग पावर है सबकॉन्शियस माइंड का. उसको अगर आप समझ लेते हैं और पॉजिटिविटी का पावर समझ लेते हैं कि मुझे पॉजिटिव सोचना है और अपनी पॉजिटिव अपनी विन की बातें ही सोचनी है, तो आप निश्चित रूप से थिंग्स विल बी पॉजिटिव इन योर लाइफ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पॉजिटिव थिंग। एक बहुत अच्छा स्लोगन यहां बाहर लगाया हुआ है, कल मैंने पढ़ा था, सक्सेस उनको मिलती है जो सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। जो सक्सेस में डाउटफुल होते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन जो सक्सेस में फुल्ली इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे सक्सेस होना ही और ये मेरे सक्सेस का विजन है, उसको सक्सेस मिलती है। मेरी लाइफ के बहुत एग्जाम्पल है, मैनी एग्जाम्पल, कि जब इस प्रकार की सक्सेस मिली है मुझे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको इस प्रैक्टिस में हमको मदद करेगी, जो हमको हमारी हैबिट डेवलपमेंट में मदद करेगी, वो है उस सुप्रीम पावर से, परमात्मा से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, वो जो सर्वशक्तिमान है, उससे हम शक्ति देवे, उसके साथ कनेक्ट होवे और उससे हम शक्ति देवे। जब वो चीज हम करने लग जाएंगे, देखिए मैं जो चीजें बता रहा हूं 90% आपको पता है, आप भी जानते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए कोई सिचुएशन आ जाए, आप भी जानते हैं कि नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, लेकिन जवाब क्या आता है, हमको पता है लेकिन होता नहीं। ऐसा ही होता है, आप कभी किसी से गुस्से से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, डिस्टर्ब हो गए, फिर क्या कहें, मुझे पता था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई कुडंट कंट्रोल माइसेल्फ। अभी भगवान से आपको क्या मिलेगा, भगवान से आपको वो पावर मिलेगा जो आप कंट्रोल कर सकते हो सेल्फ, वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर थ्रू दैट राजयोगा मेडिटेशन यू विल गेट। एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस राजयोगा फॉर लास्ट 23 ईयर्स, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से वो पावर हम लेके अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते थे। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके पहले बहुत बहुत अलग ललित था, ये बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेशन, शॉर्ट टेम्पर, बहुत अलग तरह से। लेकिन और मेडिटेशन से कोई तुरंत चेंज नहीं हो गया, ओवरनाइट चेंज नहीं हो गया, बट आई हैड टू डू प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के बाद आज मैं कह सकता हूं कि थिंग्स आर एब्सोल्युटली चेंज्ड। तो वो सिचुएशन हमको वो परमात्मा की शक्ति के द्वारा हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं।
अहमदाबाद के नवरंगपुरा में बाबा के सेंटर दिव्य दर्शन भवन के पास ही
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कैसे परमात्मा के साथ से कितना बड़ा चेंजेस हम ला सकते हैं। ये अहमदाबाद की बात है, वहां पर एक बहुत पॉश एरिया में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर के लिए प्रॉपर्टी लेनी थी, तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम इन्वॉल्व इन दिस ऑल प्रोसेस। तो वो प्रॉपर्टी जब हमने फाइनल किया तो एवरीथिंग वाज फाइन, वो सिचुएशन सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी के पास में एक स्लम एरिया था, बिल्कुल नजदीक उसी कॉलोनी में, उस स्लम एरिया के भी गेट्स खुलते थे, पर चूंकि बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी थी तो फाइनल नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली हमने फाइनल कर दिया कि चलो ये ले लेते हैं, देखा जाएगा, लेकिन लेने के बाद देखा तो बहुत न्यूसेंस था उस स्लम का, वो बच्चे, गंदे बच्चे, गालियां देते, झगड़ते, व्हीकल पर कुछ भी फेंक देते, मतलब, और लोट ऑफ गंदगी, इतना सब कुछ था कि परेशान हो गए कि ये स्लम का, और जो उस सोसाइटी में रहने वाले थे वो यही सोचते थे कि ये गवर्नमेंट को कह के इस स्लम को यहां से हटाया जाए, उसके लिए वो सोचते रहते थे हटाया जाए हटाया जाए। जब हमने भी वहां 2 साल वहां वो हमारा सेंटर चला तो उसका सोल्यूशन सोच रहे थे, इसका क्या सोल्यूशन लाया जाए प्रॉब्लम का। तो एक सॉल्यूशन माइंड में आया कि हम इस स्लम को ही चेंज कर दें, इस स्लम को दिव्य नगरी बना दें, डिवाइन लोकेलिटी हम इसको बना दे। तो ये वीडियो में 4-5 मिनट का वीडियो, उसमें कैसे वो चेंज प्रोसेस अभी 6 मंथ्स पहले ही शुरू किया और कितना वंडरफुल रिजल्ट मिला है बिकॉज ऑफ गॉड पावर, कि वो सेंटर पर आके कैसे चेंज होते हैं वो इसमें बताया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखेंगे।
भगत की चाली नाम से छोटी छोटी झोपड़ियों वाला एक स्लम एरिया बसा हुआ है, जिसमें करीब 575 परिवारों में करीब 3500 लोग रहते हैं। मासूम बच्चों में निम्न शिक्षा स्तर एवं सुपारी सिगरेट का व्यसन, उनके माँ बाप भी अशिक्षित एवं शराब तंबाकू के व्यसनी, झोपड़ियों में टॉयलेट नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, बेरोजगारी, गंदगी, पारिवारिक झगड़े आदि अनेक प्रकार की समस्याएं वहाँ अड्डा जमाए बैठी हैं। इस्लाम एरिया के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भगत की चाली से भगत की दिव्य नगरी नाम से यह पंच वर्षीय प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में राजयोग के प्रयोग से बच्चों में संपूर्ण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संपूर्ण व्यसन मुक्ति, रोजगार प्रदान करना आदि रखा गया। 16 नवंबर 2014 से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले करीब 150 बच्चों को सेवा केंद्र पर बुलाया गया। पहले ही दिन उनके नाखून काटे, बाल बनाए, चोटी बनाई, हाथ पैर धुलवाए, फिर क्लासरूम में बिठाया, दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रतिज्ञाएं बुलवाई गई। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को रोज शाम 6 से 7 बजे बुलाया जाता है। पहले थोड़ी कसरत, फिर खेल खेल में योग, फिर बाबा के गीत पर प्रार्थना और योगाभ्यास कराने के बाद उन्हें गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, पर्यावरण, गुजराती आदि विषयों पर समझाया जाता है। बच्चे शाम 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। ईश्वरीय स्नेह और राजयोग के विशेष प्रयोग द्वारा बच्चों का गुटखा खाना, गाली बोलना, मारपीट करना छूट गया। जो बच्चे हाथ में गंदगी लिए घूमते फिरते थे, वे अब हाथ में झाड़ू लिए स्वच्छता रैली निकालते हुए अपने परिवार वालों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। पिछले 4 मास में अनुभव सुनाना, भाषण करना एवं बाबा के अनेक गीत गाना सीख गए हैं। बच्चों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसके कारण पहली बार उनके माँ बाप भी बाबा के घर में आए। दिव्य गुण जागृति रैली निकालते हुए उन्हें कॉलेज के ग्राउंड में ले गए, जहां फ्री में पतंगे और डोर देकर उन्हें खूब बहलाया। जैसा अन्न वैसा मन, बाबा की इस शिक्षा को अपनाने के लिए प्रति गुरुवार सभी बच्चों को भोग तो दिया ही जाता है, परंतु अब हर शनिवार को उनकी क्लास के बाद सभी को दिव्य खिचड़ी भी खिलाते हैं, जिसका सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। चाली में रहने वाले मुस्लिम परिवार से भी बच्चे आते हैं और बहुत प्यार से बाबा बाबा गाते रहते हैं। अब तो 5-6 बच्चे सुबह के मुरली क्लास में भी आने लगे हैं। यह सेवा सबको इतनी पसंद है, जो सेवा देने के लिए सोसाइटी के सदस्य, आसपास के हॉस्टल के युवा भी खींचे चले आते हैं, जिन्हें साप्ताहिक कोर्स भी कराया जाता है। इस सेवा के लिए धन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। CSR की जगह ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी मदद मिल रही है। कुछ भाई बहनों ने उन बच्चों के लिए ड्रेस, टॉयलेट किट, स्टेशनरी किट आदि सामग्री सौगात में दी। दिव्य नगरी का चित्र छपाया हुआ ड्रेस पहनकर आने से अब वे फरिश्ते नजर आते हैं। 25 जनवरी को आदरणीय सल्ला दीदी जी, आदरणीय चंद्रिका बहन जी, स्थानीय काउंसलर, समाज सेवियों एवं बच्चों के परिवार वालों की उपस्थिति में बाबा के भवन के बाहर ही इन बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम देने वाले बच्चों के परिवार वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे ही बच्चे हैं। कल तक 4 लाइन ठीक से नहीं बोलने वाले बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब तक मधुबन से करुणा भाई जी, डॉक्टर बनारसी भाई जी, भरत भाई जी, कोमल भाई जी, आनंद दादा जी आदि फरिश्तों ने भी आकर उन्हें आशीर्वाद दिए हैं। ललित भाई जी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में विशेष मार्गदर्शन रहा है। इन 4 मास में बच्चों की जीवन बदल गई। उनके चेहरे खुशी से संपन्न, विश्वास से परिपूर्ण बाबा के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गए। उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। अब तो ये बच्चे ही अपने माँ बाप के व्यसन छुड़वा रहे हैं। अहमदाबाद के मेयर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्थानीय MLA, काउंसिलर आदि सरकारी अधिकारियों ने भी ब्रह्म कुमारी के इस प्रयास की प्रशंसा की है और कुछ और सेवाएं भी ऑफर की है। इस अप्रैल मास से इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज चालू करेंगे, जिसमें उनके माँ बाप को प्रौढ़ शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जाएगा। ओम शांति।
अब ये सिचुएशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां के लिए, एज ऑन टूडे वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस सेंटर के लिए। वो सेंटर इतना फेमस हो गया है अभी पूरे अहमदाबाद में, और जिस जिसने ये न्यूज देखा है दे आर अप्रिशिएटिंग दिस एक्टिविटी। तो देखिए कैसे, अगर हम उस सिचुएशन को पकड़ के बैठते कि नहीं नहीं इसमें तो क्या हो सकता है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो ये, तो उसका कभी कुछ नहीं होता। लेकिन उसी को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया एंड वंडरफुल सर्विस इज गोइंग ऑन देयर। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उसको रेस्पॉन्स करके ये करें। टाइम हो गया है, काफी बातें तो बहुत करनी है, लेकिन हम इसको समअप करेंगे। मैं अपना एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे भगवान की मदद मिलती है, जो मैंने यहाँ आके सीखा है और मैं कर रहा हूँ। मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी पूरी, लेकिन शॉर्ट में कि मैं साधु बनने जा रहा था भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, कि भाई भगवान का साक्षात्कार हो जाए मुझे। और जब बनने ही वाला था उसी समय यहाँ का 7 डेज कोर्स किया ब्रह्मा कुमारीज का, और मुझे वो रियलाइजेशन हो गया जो मुझे चाहिए था। देन आई ज्वाइन ब्रह्मा कुमारीज एंड मेडिटेशन। तो मेरे फैमिली, मतलब मदर, फादर, ग्रैंड मदर, वो सबको बहुत अच्छा नहीं लगा ये, तो उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया। 7 इयर्स तक बहुत मेरा अपोजिशन किया उसके लिए। सो मेनी सिचुएशन क्रिएट हुई, बट मैं तो खुश होके चल रहा था आगे। तो मेरे से छोटी दो सिस्टर है, तो एक सिस्टर का मैरिज तो फादर ने करवा दिया था, दूसरी सिस्टर का मैरिज का सेटिंग नहीं हो रहा था। तो मेरे पिताजी, वो थोड़ा गुस्से का स्वभाव है, तो उन्होंने मेरे को गुस्से में आके बोला कि तू ब्रह्मा कुमारीज में जाता है इसलिए तेरी सिस्टर से कोई मैरिज नहीं करता है, अभी ये इसके मैरिज के लिए लड़का ढूंढना और उसका सारा खर्चा करना ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उस समय जस्ट जॉब ज्वाइन ही किया था सीए होने के बाद, तो मेरे पास कोई बैंक बैलेंस ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फादर ने बोल दिया कि ये आप तो तेरे को ही करना है अभी सब। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे हर एक सेंटर में आपने देखा एक मेडिटेशन रूम बना हुआ होता है जिसमें बाबा का फोटो होता है और मेडिटेशन कर। तो मैं कुछ भी बात होती थी ऐसी, कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आती है, मैं जस्ट शांत होकर बाबा के सामने जाके बोल देता कि बाबा ये बात है, बस भगवान को बता दिया, परमात्मा शिव पॉइंट ऑफ लाइट उनको बता दिया, मैं निश्चिंत हो जाता। तो मैंने उनको बता दिया कि बाबा ये बात है। फिर क्या हुआ कि मैं अहमदाबाद में जहां जॉब करता था, तो वहां मुझे हमारे टीचर बहन ब्रह्मा कुमारी इंचार्ज बहन ने बताया कि आपको आबू से इनविटेशन लेटर मिला है, 15 डेज वहां पर सेवा के लिए आपको बुला रहे हैं। माउंट आबू इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, तो आपको वहां 15 दिन सेवा के लिए बुला रहे थे। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं हेडक्वार्टर में थोड़ा रह के सेवा करूं। तो मैंने अपनी ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा हमारे बॉस को कि मुझे 15 डेज के लिए लीव चाहिए। तो बॉस ने कहा कि नहीं, हम आपको 15 डेज लीव नहीं दे सकते। मैंने उसको बहुत समझाया, आई एक्सप्लेन हिम कि दिस इज अ वेरी ग्रेट सिचुएशन फॉर मी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे हेडक्वार्टर में सेवा का चांस मिल रहा है, प्लीज गिव मी लीव फॉर 15 डेज। ही रिफ्यूज्ड स्ट्रेट वे, बोले एक दो दिन के लिए आपको जाना है वो अलग बात है, 15 डेज हम आपको लीव नहीं देंगे। देन आई थॉट, मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दिया कि प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि ये 98 की बात है, तब इतने जॉब नहीं थे इंडिया में। तो उसने कहा कि इतनी अच्छी जॉब है आपकी, आप छोड़ के जा रहे हो सब। मैंने कहा मुझे जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी, बट आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस सेवा. तो उन्होंने मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने मेरे को समझाया भी सही, बट आई वॉज फर्म ऑन माई डिसीजन. तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. आई वेंट टू आबू फॉर 15-20 डेज, मैं वहां सेवा किया. आई केम बैक, अभी जॉब तो था नहीं मेरे पास, एक छोटे से कमरे में मैं किराए पर रहता था अहमदाबाद में. तो अभी क्या करने का, वो बहन का मैरिज करने का उसका खर्चा, वो डिपॉजिट तो अलग, अभी जॉब भी चला गया. सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो पैसा तो सही है वो तो अलग, लेकिन जॉब भी चला गया. फिर हमारी जो बहनें होती ना ब्रह्मा कुमारी, जो वो सेंटर का इंचार्ज बहन थी, तो हमने उनसे पूछा कि अभी हम क्या करें. आई हैव थ्री ऑप्शन, आइदर आई ज्वाइन अनदर जॉब और आई गो टू फॉरेन. उस समय थोड़ी फॉरेन का भी जॉब का बातचीत चल रहा था अफ्रीका में, तो मैं वहां जाऊं या अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करूं. तो मैं जो हर काम करता था ना, जो हमारी जो इंचार्ज बहन है ब्रह्मा कुमारी के, उनको पूछ के करता हूं, तो उनको मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है. और मैं यही समझता हूं कि भगवान ने इनको निमित्त बनाया है तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो मुझे गाइडेंस मिलता है. तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप खुद का प्रैक्टिस चालू कीजिए. अब उनको पता नहीं कि प्रैक्टिस चालू करने के लिए ऑफिस होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, कोई क्लाइंट होना चाहिए, तो खुद का प्रैक्टिस होता है, कुछ कर सकते हैं. बट चूंकि उन्होंने बोला खुद का प्रैक्टिस चालू कीजिए, आई टुक एट ब्लेसिंग. और मैंने जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था, वही विजिटिंग कार्ड, उस एड्रेस का विजिटिंग कार्ड छपवा दिया और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मैंने प्रैक्टिस चालू कर दिया है और आपको कुछ भी काम हो तो मुझे बताना. वंडर देखिए कि कैसे भगवान की मदद मिलती है. लोग कहते हैं कि भगवान हजार हाथ वाला है, कहते हैं ना प्रेयर्स में बोलते हैं यू हैव थाउजेंड हैंड्स एंड लाइक दिस, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे करें इस मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा हम कर सकते हैं. तो मैंने जब प्रैक्टिस चालू किया तो फर्स्ट 20 डेज, इन द फर्स्ट 20 डेज मुझे इतना वर्क एश्योरेंस मिला जो मेरी फुल ईयर की सैलरी के बराबर हो जाता था इन फर्स्ट 20 डेज. वो फुल ईयर की, देन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया. मैंने थैंक्स भी कहा ऊपर वाले को कि सचमुच तू हजार हाथ वाला है तो कैसे तू काम करता है पूरा. अभी नेक्स्ट और 10 डेज ही पूरा हुआ था और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो मुझे पहचानता था, ही केम टू मी और मुझे कहा कि आपने प्रैक्टिस चालू किया है. आई सेड यस आई स्टार्टेड प्रैक्टिस. दैट यू आर इन पार्टनरशिप विथ समवन? आई सेड नो इट्स प्रोप्राइटरशिप. तो कि आप मेरी ऑफिस में आके मुझे मिलना. तो मैं उनकी ऑफिस में मिलने गया तो उसने कहा सी दिस इज माई सेटअप एंड आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स एंड दिस थिंग, अभी मेरा थोड़ा एज भी हो गया है, आई वॉन्ट पार्टनर. अगर आप पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं तो हम इतना परसेंट शेयर आपको देंगे. देन आई सेड हिम कि आई हैव नो कैपिटल टू गिव यू, क्योंकि कोई भी एस्टेब्लिश फर्म में आपको पार्टनर बनना है तो यू हैव टू गिव कैपिटल. तो आई सेड आई हैव नो कैपिटल टू गिव यू. ही सेड नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. आप ये टेबल चेयर है, ये आपका केबिन है, आप आके बैठिए, वर्क स्टार्ट कीजिए, इसी मंथ से हम आपको इतना परसेंट शेयर दे देंगे. आई सेड ओके. मैंने वो हमारी बहन जी को पूछा, डीके बहन जी को, एंड शी शेड किया यू कैन ज्वाइन. मैंने ज्वाइन किया. अब सरप्राइजिंगली जिस मंथ में मैंने ज्वाइन किया उसी मंथ से वहां एक स्पेशल सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ, एक नया असाइनमेंट मिला और स्पेशल सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ. और विद इन 8-10 मंथ सिस्टर के मैरिज के लिए जितना पैसा चाहिए था वो सब इकट्ठा हो गया. मेरा पार्ट में इतना शेयर मुझे मिला कि वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया और एक अच्छा फैमिली भी मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, तो एंगेजमेंट हो गया और थोड़े समय बाद उसका बहुत अच्छी तरह से मैरिज भी हो गया. तो सिचुएशंस आई मेरे सामने, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया और परमात्मा की मदद ली. मेन बात है हमारा रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर हमको भगवान की मदद मिल जाती है तो थिंग बहुत इजी हो जाती है. और सिंस आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो अभी ऐसी प्रैक्टिस सेट हो गया है कि मैं अपने ऑफिस से बाहर रहते हुए भी सारा कुछ मैनेज करता हूं और ये सेवा में पार्टिसिपेट कर सकता हूं. तो ये वो डिसीजन लिया था उस सिचुएशन में भी, लेकिन परमात्मा की मदद मिली थी तो आज ये सिचुएशन है। इसलिए ऐसे मतलब देर आर थाउजेंड एग्जाम्पल, आपको बैठ के मैं सुनाऊं तो इस 23 इयर्स में इतने एग्जाम्पल है परमात्मा की मदद के और पॉजिटिव थॉट के, पॉजिटिव थिंकिंग के, कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है पॉजिटिव से। लेकिन फिर कभी चांस मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और अभी समअप करने से पहले हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सिचुएशंस आएगी लाइफ में, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सिचुएशंस का रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी एनालिसिस में ज्यादा नहीं जाएं, लेकिन फर्स्ट जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है आपका, उस फर्स्ट रेस्पॉन्स को आप पॉजिटिव बना लें। पॉज करें, थोड़ा सोचें, माइंड को कूल करें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के फर्स्ट रेस्पॉन्स को पॉजिटिव बनावे, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और उस पॉजिटिव साइकिल के बाद वो पॉजिटिव चैनल चालू हो जाएगा और जो सिचुएशंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सिचुएशंस आपको अपॉर्चुनिटीज फील होगी और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में लेके आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पीसफुली एंड आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू, सिंस आई एम coming from the headquarter of the organization, I invite all of you to the visit our headquarter in Rajasthan, Mount Abu. Wo very beautiful place. Yahan pe aap Brahma ya sanstha se aap contact karenge to bhi hamare yahan programs hote rehte hain, different programs, to wahan aapko un programs mein bula sakte hain. Aap zarur aaiye aur wahan fir hamari mulaqat feel hogi. Abhi hum 3 minute ka silence ke baad मेडिटेशन में एक सॉन्ग बजेगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। उस सॉन्ग के शब्दों में आप अपने आप को मेडिटेट करते जाइए, उस परमात्मा के साथ अपने को लिंक करते जाइए और वो पॉजिटिव पावर अपने में फील करते जाइए।
मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। तो आज हम सभी ने बहुत सुंदर तरह से जाना, सीखा और समझा कैसे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, कैसे जीवन में आने वाले तूफानों को क्या बनाएंगे, तोहफा बना सकते हैं, और उसके साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शांत मन से उनको एक्सेप्ट कर उनमें पॉजिटिविटी को ढूंढकर आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम ललित भाई का एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत, आप सारा दिन ऑडिट के काम में बिजी होते हुए भी अपना इतना अमूल्य समय निकालकर हम सबके साथ इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट संडे आप सभी को मालूम हो, आप सबके लिए बहुत सुंदर गोल्डन चांस है, दिल्ली ओआरसी गुड़गांव सेंटर के डायरेक्टर आशा दीदी वो हम सबके बीच होंगे नेक्स्ट संडे, और नेक्स्ट संडे का टॉपिक होगा लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, और वो संडे टॉक ऑडिटोरियम में रहेगा। तो आप सभी उस चांस को मिस ना करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जिनको भी आप बुलाना चाहें। आशा दीदी बहुत सीनियर फैकल्टी हैं और बहुत छोटे उम्र से इस ज्ञान से जुड़े हैं और बहुत सुंदर तरह से कैसे लीडरशिप क्वालिटी एक अपने अंदर इंक्रीज करना है, बहुत सुंदर उनके अंदर आर्ट है। तो आप सभी उस अवसर का लाभ उठाएंगे और साथ ही जिन जिन को भी मेल्स नहीं आ रहे हैं तो आप सभी अपना नाम वहाँ बाहर रिसेप्शन काउंटर पर रजिस्टर्ड करा देंगे। और जिनको भी नेक्स्ट संडे के कार्ड्स अगर किसी को लगता है कि मुझे किसी अपने खास को इनवाइट करना है तो आप रिसेप्शन से ले सकते हैं, बाकी सबको इन्फॉर्मेशन मेल से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ओम शांति। अभी आप प्रसाद लेकर जाएंगे।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा।